दिन भर तारीख 6 मई दिन रविवार, मैं हूं वात्सल्य राय। अफगानिस्तान में 6 भारतीयों का अपहरण, किसी संगठन ने अब तक नहीं ली है जिम्मेदारी। ईरान ने अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप को दी चेतावनी, परमाणु समझौता खत्म किया तो पड़ेगा पछताना। और भारत प्रशासित कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 चरमपंथियों की मौत।
बहुत पिछले 5-6 सालों से एक्टिव था और काफी लड़कों को रिक्रूट किया।
झड़पों में 5 आम लोगों के मारे जाने के बाद तनाव की स्थिति। खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। पाकिस्तान स्थित न्यूज एजेंसी अफगान इस्लामिक प्रेस के अनुसार, उत्तरी अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने भारतीय कंपनी के ईसी इंटरनेशनल के 7 कर्मचारियों को अगवा कर लिया है। अगवा किए गए इन लोगों में 6 भारतीय हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारतीय इंजीनियर्स के अपहरण की पुष्टि की है और कहा है कि वो अफगान अधिकारियों के संपर्क में हैं और इस संबंध में और जानकारी जुटाई जा रही है। अपहृत किए गए लोगों की पहचान अभी तक जाहिर नहीं की गई है। अफगानिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि खोस्त प्रांत की एक मस्जिद में हुए बम धमाके में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि धमाका उस वक्त हुआ जब लोग दोपहर की नमाज के लिए एकजुट हो रहे थे। इस मस्जिद में मतदाताओं के पंजीकरण का काम भी किया जा रहा था। अक्टूबर में अफगानिस्तान में चुनाव होने वाले हैं और हाल के वक्त में यहां मतदाता पंजीकरण केंद्रों पर हमले बढ़े हैं। बीते 9 सालों में पहली बार लेबनान में नागरिक आम चुनावों में मतदान कर रहे हैं। राजधानी बेरूत में प्रधानमंत्री साद हरीरी ने अपना वोट डाला और लोगों से अपील की कि वो अपने देश को और मजबूत बनाने में मदद करें। मतदान पर नजर रख रहे अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का कहना है कि अब तक कहीं से हिंसा की कोई खबर नहीं आई है। इससे पहले देश में साल 2009 में आम चुनाव हुए थे, जिसमें 4 साल के कार्यकाल के लिए सरकार चुनी गई थी। विश्लेषकों का कहना है कि इन चुनावों का असर सत्ता में परिवर्तन से नहीं होगा। लेबनन के राष्ट्रपति माइकल आउन ने बादबा में वोट डाला और वोट डालने के बाद कहा,
बारे बिल लेह फिनेस तखसर।
चुनावों में एक पक्ष की हार तय होती है। जिन्हें आप पसंद नहीं करते, आप उन्हें वोट मत दीजिए और उन्हें हारने दीजिए। आप अपना वोट उन्हें दीजिए जिन्हें आप अपनी सरकार में देखना चाहते हैं, और आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको कोई भी प्रभावित ना कर सके। लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पोलैंड में आए भूकंप के बाद वहां की एक कोयला खदान में फंसे 4 मजदूरों को निकालने के लिए बचाव दल बीती रात से लगातार कोशिश कर रहा है। शनिवार आए भूकंप के कारण जास्त्रजेबी द्रोज शहर के नज़दीक में मौजूद देश के सबसे बड़े जोफियोका कोयला खदान का एक हिस्सा धंस गया था और इसमें 900 मीटर की गहराई में 7 मजदूर दब गए थे। शनिवार को घायल अवस्था में 2 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया था, जबकि एक मजदूर की लाश मिली थी। अभी भी 4 मजदूर खदान में दबे हुए हैं, जिनमें से एक की जगह का पता लगा लिया गया है। शहर की कोयला कंपनी के प्रमुख डेनियल ओजोन ने बताया,
Kolejny zastęp, który został wprowadzony w okolicy tego miejsca, gdzie znaleźliśmy górnika.
खदान में जिस जगह से हमें एक मजदूर का शव मिला था, वहां पास में बचाव दल को एक और बचाव दल को भेजा गया था, जिन्हें वहीं नज़दीक में दूसरे मजदूर के दबे होने की खबर मिली है। ये मजदूर पाइपलाइन और खनन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ मशीनों के बीच दबा हुआ है। जहां शव मिला था वहां से ये जगह कुछ 10 मीटर भीतर की तरफ है। अब हमारा बचाव दल यहां पर भारी उपकरण लाने वाला है। जितनी जानकारी हमें है उसके अनुसार 5-6 घंटे तक लग सकते हैं उन्हें बचाने के लिए। शहर की कोयला कंपनी के प्रमुख डेनियल ओजोन के शब्द। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि अगर अमेरिका ने उसके साथ परमाणु करार रद्द करने का फैसला किया तो ये उनकी ऐतिहासिक भूल होगी और इसके लिए उन्हें बाद में पछतावा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार इस करार से पीछे हटने की बात कर चुके हैं और जल्द ही इस पर कोई फैसला लेने वाले हैं। हसन रूहानी का कहना है कि ईरान अमेरिका के फैसले का विरोध करेगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। दिन भर की शुरुआत अफगानिस्तान से आ रही एक बड़ी खबर से। रिपोर्टों के मुताबिक उत्तरी अफगानिस्तान के बगलान प्रांत से भारतीय कंपनी केईसी इंटरनेशनल के 7 कर्मचारियों को अगवा कर लिया गया है। इनमें से 6 भारतीय हैं। इनकी पहचान अभी जाहिर नहीं की गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इनके अगवा होने की पुष्टि की है और ये कहा है कि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता दिनेश उप्रेती। दिनेश जी, क्या कुछ खबरें हैं?
जी, जैसा कि आपने बताया, उत्तरी अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने 6 भारतीय इंजीनियर समेत 7 लोगों का अपहरण किया है। खबरें हैं कि इंजीनियर्स एक भारतीय कंपनी केईसी इंटरनेशनल के लिए वहां बिजली के टावर लगाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे।
ये घटना कब की है, किस वक्त?
ये सुबह की घटना है और काबुल से करीब 200 किलोमीटर दूर की घटना है। पुलिस ने बताया कि अभी तक किसी चरमपंथी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पुलिस को शक है कि इसके पीछे तालिबान का हाथ है। उसकी वजह ये मानी जा रही है कि कुंदूज और बगलान का कुछ इलाका अब भी तालिबान के नियंत्रण में है और अफगानिस्तान सरकार ने करीब 2 महीने पहले इन इलाकों की बिजली काट दी थी। तब मार्च में तालिबान ने एक बयान जारी कर कहा था कि अफगान सरकार इन इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल रखे। उस समय तालिबान ने धमकी दी थी कि मांगें पूरी नहीं की गई तो काबुल के लिए बिजली की आपूर्ति रोक दी जाएगी। तालिबान ने अप्रैल में बगलान में एक बिजली का खंभा भी उड़ा दिया था, जिससे काबुल दो दिन तक अंधेरे में डूबा रहा था। हालांकि अभी तक तालिबान ने ये कहा है कि हमको इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि ये इस घटना के पीछे किसका हाथ है।
जी दिनेश जी, भारतीय कंपनियां वहां विकास के कई प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं, अलग अलग जगह काम कर रही हैं। विदेश मंत्रालय का एक बयान आया है जिसमें पुष्टि की गई है, और कोई आधिकारिक जानकारी किसी तरीके से अफगानिस्तान सरकार या भारत सरकार की तरफ से मिल पाई है? पहचान तो अभी तक सामने नहीं आई है इन लोगों की।
जी, अफगान मीडिया में ये खबर काफ़ी पहले आ गई थी, लेकिन उसके कई घंटों के बाद में जो है भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस घटना की पुष्टि की और विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि हमें इस घटना की जानकारी है, लेकिन अभी हम इस बारे में और जानकारियाँ जुटा रहे हैं। इसके अलावा अभी और कोई जानकारी विदेश मंत्रालय ने नहीं दी है।
बहुत शुक्रिया दिनेश जी इस पूरे अपडेट के लिए, और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस बारे में जो ज़्यादा ब्यौरा है उसकी जानकारी आप bbchindi.com पर हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर उनके देश ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को ख़त्म किया तो उन्हें पछताना होगा। रूहानी ने कहा है कि ईरान के पास अमरीका के किसी भी कदम के मुकाबले की योजना है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साल 2015 में हुई इस डील की लगातार आलोचना करते रहे हैं। हालांकि रूस, ब्रिटेन और फ्रांस समेत डील पर दस्तखत करने वाले दूसरे देश इसके समर्थन में हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन इस मुद्दे पर बातचीत के लिए फिलहाल अमरीका के दौरे पर हैं। ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता अभिजीत श्रीवास्तव।
ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमेरिका को उनके देश और 6 अन्य देशों के बीच हुए परमाणु समझौते को खत्म करने को लेकर आगाह किया है। रूहानी ने कहा है कि ईरान अमेरिका के हर कदम का सामना करने के लिए तैयार है। टीवी पर प्रसारित एक बयान में रूहानी ने कहा,
इन जदीदन به عنوان رئیس جمهور آمریکا سخنان خودش رو از
अमरीका जिस रास्ते पर है, अगर वो परमाणु समझौते से बाहर निकलता है तो वो जल्दी ही देखेंगे, इसके लिए उन्हें ऐतिहासिक तौर पर खेद जताना पड़ेगा। ये थे हसन रूहानी के शब्द। साल 2015 में ये समझौता ईरान और अमरीका, चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप इसकी लगातार आलोचना करते रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि मौजूदा समझौता सिर्फ ईरान की परमाणु गतिविधियों पर कुछ वक्त के लिए रोक लगाता है और इसमें बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करने पर रोक नहीं है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 12 मई तक इस डील को लेकर फैसला कर सकते हैं। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और इस समझौते पर दोबारा बात नहीं हो सकती है। रूहानी ने इसे लेकर कहा,
अगर बेखाहत अज बरजाम खारिज शवद बेजूदी खाहत दीद
श्रीमान ट्रंप को सत्ता में आए 15 महीने हो चुके हैं और वो कहते हैं कि परमाणु समझौता अमेरिका की ओर से किया गया सबसे खराब समझौता है। वो बार बार कहते हैं कि इसके लिए सिर्फ ईरान को फायदा होगा। वो कहते हैं कि पूर्व सरकार ने गलती की थी। इन बयानों में कोई तर्क नहीं है। हमने 6 देशों से बात की और समझौता किया जिसे संयुक्त राष्ट्र ने मंजूरी दी। ये थे हसन रूहानी के शब्द। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी अमरीकी राष्ट्रपति को ये समझाने में जुटे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए मौजूदा समझौता सबसे उम्दा रास्ता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी ट्रंप को समझौते से बाहर आने को लेकर आगाह किया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन अमरीका के दौरे पर हैं और वो व्हाइट हाउस के अधिकारियों से इस मुद्दे पर बात करेंगे।
रिपोर्ट सुना रहे थे अभिजीत श्रीवास्तव।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
अगली खबर भारत प्रशासित कश्मीर से। भारत प्रशासित कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 5 चरमपंथियों की मौत हो गई। मुठभेड़ के विरोध में दक्षिणी कश्मीर में हुए प्रदर्शनों के दौरान 5 आम लोगों की भी मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। फिलहाल कश्मीर घाटी में तनाव की स्थिति बनी हुई है। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
इतवार को दक्षिणी कश्मीर के शुपियां जिला के बाड़ीगाम इलाके में सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच 3 घंटों तक चलने वाली मुठभेड़ में पुलिस ने 5 चरमपंथियों को मारने का दावा करते हुए बताया है कि मारे गए चरमपंथियों में हिजबुल मुजाहिदीन का एक टॉप कमांडर सदाम पडर भी शामिल था, जबकि कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर रफीक अहमद भट्ट भी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। पुलिस का कहना था कि भट्ट 3 दिन पहले चरमपंथी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गए थे। 3 दिन पहले भट्ट अचानक गायब हो गए थे, जिसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में शनिवार को छात्रों ने भट्ट के गायब होने के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। भट्ट कश्मीर यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी पढ़ाते थे, जो कि जिला गांधरबल के निवासी थे। पुलिस का कहना था कि हिजब कमांडर सदाम पडर बीते 7 वर्षों से सक्रिय थे, जो दक्षिणी कश्मीर में युवाओं को चरमपंथी सफों में शामिल करने के लिए उनका काफी बड़ा रोल रहा है। पुलिस का कहना था कि भट्ट और उनके साथियों को आत्मसमर्पण करने के लिए काफी ज्यादा कोशिश की गई। पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर SP वैद ने BBC को बताया।
बहुत पिछले 5-6 सालों से एक्टिव था और काफी लड़कों को रिक्रूट किया, हमने कोशिश की उसको सरेंडर कर।
सदाम पडर वर्ष 2016 में मारे गए हिजब कमांडर बुरहान वानी 11 सदस्यों के ग्रुप का आखिरी चरमपंथी था। शुपियां में मुठभेड़ की खबर फैलते ही एनकाउंटर स्थल के नजदीक और दूसरे इलाकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई, जिन झड़पों के दौरान 5 आम नागरिक भी मारे गए हैं। प्रदर्शनों के दौरान दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं, जिन्हें श्रीनगर और शुपियां के अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया है। शुपियां के अस्पताल में आम लोग चरमपंथियों के समर्थन में नारे लगा रहे थे। इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रफीक का चरमपंथी बनना उन लोगों के लिए जवाब है जो कश्मीर में नौकरियों और विकास को कश्मीर समस्या का हल मानते हैं। कश्मीर में रोज रोज की मुठभेड़ों को आखिर आम कश्मीरी कैसे देखते हैं और इन मुठभेड़ों पर उनका क्या कहना है? एक आम छात्र हमदान कहते हैं,
जी देखिए 1990 से लेकर आज तक अगर देखा जाए बहुत सारे एनकाउंटर्स हो गए, बहुत सारे मिलिटेंट्स को चरमपंथियों को हलाक किया गया और बहुत सारे मासूम लोगों को भी हलाक किया गया। अगर देखा जाए तो इससे जो रिजल्ट निकलता है, जो एक क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट है कि ना तो एनकाउंटर से कश्मीर के अंदरूनी हालात सही होते हैं और ना ही इसके सियासी हालात सही होते हैं।
साथ ही विश्लेषक ये भी कहते हैं कि अब पढ़े लिखे नौजवान जिस तरह बंदूक उठा रहे हैं उसका साफ साफ मतलब यह है कि कश्मीरी नौजवानों में काफी नाराजगी है। पत्रकार और विश्लेषक हारून ऋषि।
इंडियन मीडिया के एक तबके का एक शुरू से एक प्रोपेगेंडा या एक नैरेटिव जो दिया जा रहा था कि वो जो मिलिटेंसी है इससे वही लोग वापस हो रहे हैं जो बेरोजगार है या जो हालात के सताए हुए या गुर्बत मुफलिसी का शिकार है, लेकिन हमारे सामने ऐसी पिछले 1-2 साल के अंदर ऐसी बहुत सारी मिसालें आई हैं जिससे ये पता चलता है कि ये बेसिकली आइडियोलॉजिकली जो इससे मुत्तफिक हैं वो लोग सामने आ रहे हैं। इसमें कोई इम्तियाज नहीं है, इसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, अच्छे खासे अहदों पे काम करने वाले लोग भी हैं।
इस बीच हुरियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौली उमर फारूक ने लोगों से अपील की है कि वो कल यानी सोमवार को सेक्रेटरिएट की तरफ शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करें। انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب تک کشمیریوں کا روزانہ قتل عام بند نہ کیا جائے یہ پردرشن جاری رہیں گے۔ ماجد جہانگیر، بی بی سی، سری نگر۔
بھارت پرشاست کشمیر میں استھتی لگاتار تناؤ پورن بنی ہوئی ہے۔ بیتے ایک مہینے کے دوران چرم پنتھیوں، عام لوگوں اور سرکشا بلوں کے جوانوں کو ملا کر 40 سے زیادہ موتیں ہو چکی ہیں۔ بڑھتے تناؤ اور ویروت پردرشنوں کی وجہ کیا ہے؟ میں نے شری نگر میں موجود ورشٹھ پترکار طاہر محی الدین سے یہی سوال کیا۔
پولیٹیکلی معاملات کو ایڈریس کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ پی ڈی پی اور بی جے پی کا الائنس ہوا تھا، تو اس وقت ایک ایجنڈا آف الائنس طے ہوا تھا، جس کے تحت جو مرحوم جو تھے پی ڈی پی کے اس وقت چیف منسٹر مفتی محمد سعید، ان کا یہ ماننا تھا کہ مذاکرات اور کا راستہ اپنانا چاہیے۔ سپریٹس لیڈرز ہیں، ان کو ایکٹیویٹیز کی اجازت دی جانی چاہیے، اور انہوں نے کہا تھا آئیڈیاز کی جنگ لڑیں گے ان کے ساتھ۔ ایجنڈا آف الائنس طے ہوا تھا لیکن اس پر کوئی عمل نہیں ہوا، اور نئی دہلی نے کوئی بھی جو بات ہے اس کو عملانے میں انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ مجھے لگتا ہے ایک بڑی وجہ یہی ہے، اسی کی وجہ سے یہاں سچویشن خراب ہو رہی۔
جس طرح سے کوئی بھی سیکیورٹی فورسز کا جو ایکشن ہوتا ہے، کوئی بھی کاروائی ہوتی ہے، اس کے ورودھ میں لوگ سڑکوں پر اتر رہے ہیں، کوئی ان کو پرووک کر رہا ہے یا وہ لوگ خود سڑکوں پر آ رہے ہیں؟
دیکھیے، جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں کسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے، کوئی کسی پروٹیسٹ کی اجازت نہیں ہے۔ جو سپریٹسٹس ہیں، اگر وہ کوئی مارش کرتے ہیں تو کرفیو لگا دیا جاتا ہے۔ ڈسینٹ دکھانے کے تمام جو ذرائع ہیں وہ بند ہیں۔ اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ذہنوں میں بڑی فرسٹریشن ہے، خاص کر جو یوتھ ہے۔ اس میں کچھ اور فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، جیسے جو ریلیجس آئیڈیالوجی کی وجہ سے ریلیجس اورینٹیشن ہو رہی ہے، بعض لوگ اسے ریڈیکلائزیشن کہتے ہیں، اس کا بھی کچھ اثر ہو سکتا ہے۔ لیکن بیسیکلی مجھے لگتا ہے جو فرسٹریشن ذہنوں میں ہے، اس کی وجہ سے لوگ اب صرف انہی موقعوں پر نکلتے ہیں، جب انکاؤنٹر ہوتا ہے، جب کسی ملٹنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے جنازے میں جاتے ہیں۔
راجیہ سرکار، خاص طور پر مکھیہ منتری محبوبہ مفتی، بیچ بیچ میں جو بیان دیتی ہیں وہ ڈائیلاگ کی بات کرتی ہیں، کیا وہ لوگوں تک اپنی بات پہنچا پا رہی ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟
دیکھیے، محبوبہ جی پی ڈی پی کا جو ان کا ایجنڈا ہے اس پر زور دیتی ہیں، اور وہ پرائم منسٹر مودی کے ساتھ بار بار ملتی بھی ہیں، ان پر بھی زور دیتی ہیں۔ اسی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک مذاکرات کار کا تقرر ہوا تھا دنیشور شرما کا، لیکن اس پر بھی اس کا جو منڈیٹ ہے وہ واضح نہیں ہے۔ سپریٹسٹس کے ساتھ مذاکرات وغیرہ، اس میں اس کی گنجائش بھی ابھی دکھائی نہیں دیتی۔ پی ڈی پی کو مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا ہے۔
یہ تھے شری نگر سے طاہر محی الدین۔ اگلی خبر ہریانہ سے۔ ہریانہ کے گروگرام میں پچھلے کچھ دنوں سے میدانوں اور انیہ سارجنک استھانوں پر نماز پڑھنے والے لوگوں کو ہٹائے جانے کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں۔ اس پر آج راج کے مکھیہ منتری منوہر لال کھٹر نے بھی بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ نماز سارجنک استھانوں کے بجائے مسجدوں اور عیدگاہوں میں پڑھی جانی چاہیے۔ مسلم سمودائے نے جہاں مکھیہ منتری کے رخ پر چنتا جتائی ہے، وہیں سارجنک جگہوں پر مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکنے میں لگی ہندو سنگھرش سمیتی نے اس بیان کا مکھیہ منتری کے بیان کا سواگت کیا ہے۔ آدرش راٹھور کی رپورٹ۔
ہریانہ کا گروگرام شہر پچھلے دنوں اس سمے سرخیوں میں آ گیا جب ایک ویڈیو میں کچھ لوگ میدان پر نماز پڑھ رہے لوگوں کو اٹھاتے نظر آئے۔ اس کے بعد شہر سے ایسی اور بھی گھٹناؤں کی شکایتیں آئیں۔ جب میڈیا نے ہریانہ کے مکھیہ منتری منوہر لال کھٹر سے اس وشے پر سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ سارجنک ستھانوں کے بجائے مسجد یا عیدگاہ میں ہی نماز پڑھی جانی چاہیے، اور اگر جگہ کم پڑے تو اپنی زمین پر نماز پڑھیں۔
مسجدیں پڑھنی چاہیے، نماز عیدگاہ میں پڑھنی چاہیے، اور نماز پڑھنے کے لیے کوئی ان کا اس پرکار کا ستھان کم پڑتا تو اپنے نجی ستھان کے اوپر، نجی ستھان پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ سارجنک ستھانوں پر جب تک اعتراض نہیں ہوتا تب تک کوئی بات نہیں، لیکن کسی بھی وبھاگ کی آپتی آتی ہے، کسی ویکتی کی آپتی آتی ہے تو وہاں اس کو ساودھانی ہم کو برتنی ہے۔
ہریانہ کے مکھیہ منتری نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کو سمجھایا جائے گا کہ وہ اچت ستھانوں پر نماز پڑھیں، لیکن نماز پڑھنے والوں کے لیے سرکشا کا انتظام کرنے کی مانگ کرنے والے ساماجک کاریکرتاؤں کے سموہ میں شامل اسلام الدین نے بی بی سی سے کہا کہ مکھیہ منتری کا سجھاؤ تو سواگت یوگیہ ہے، لیکن سڑک پر نماز پڑھنے والوں کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں۔
इन्होंने जो बात कही है ये बहुत अच्छी बात है और इसका होना भी चाहिए ऐसा ही, लेकिन इसमें दो तीन पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि गुड़गांव जहाँ पे अभी मेन ये मसला चल रहा है खासकर, वहाँ पे बड़ी जो आबादी है जो ये नमाज पढ़ती है सड़कों और पार्कों पे, वो वहाँ की रेजिडेंस नहीं है, वो वहाँ के मजदूर है, वो वहाँ ऑफिसों में काम करने वाले लोग हैं, उनकी वहाँ पे अपनी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है जिसके अंदर वो पढ़ लें। दूसरी बात ये कि जो नए सेक्टर्स गुड़गांव में सरकार ने काटे हैं, इसके अंदर जो कानून बनता था वो ये बनता था कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के लिए जगहें छोड़ी जाए। सरकार ने कितना बड़ा शहर प्लान किया लेकिन हमारे मस्जिद के लिए कुछ जगहें नहीं छोड़ी। इसके अंदर तीसरा मुद्दा इसके अंदर ये आता है कि वक्फ की जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, वक्फ के जो हमारी मस्जिद हैं, सरकार या तो खुद उनको एक्वायर करके हुडा के अंदर काट देती है या फिर लोग नाजायज कब्जे कर लेते हैं। अब सर हमारी चीज आप हमें दोगे नहीं, सड़क पे आप हमें पढ़ने दोगे नहीं, तो बताइए हम जाएं तो जाएं कहां।
इस्लामुद्दीन को ये भी शिकायत है कि पिछले शुक्रवार को जो लोग हमलावर हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हरियाणा शिवसेना के प्रवक्ता ऋतुराज ने बीबीसी को बताया कि गुड़गांव में उनकी पार्टी के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू क्रांति दल समेत तमाम छोटे बड़े हिंदू संगठन एकजुट होकर हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले ये मुहिम चला रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने से लोगों को असुविधा होती है।
सड़कों पे एनक्रोचमेंट करके नमाज पढ़ना कहीं पे भी लीगल नहीं है, ना ऐसा हदीस में लिखा गया है ना कुरान में लिखा गया है। दूसरी चीज, यहाँ पे ये कम्प्लीटली पूरा नेक्सस चल रहा है, 8-10 जगहों से स्टार्ट होता हुआ 110 जगह इन्होंने इस तरीके से कवर कर ली।
जिस तरह से आपने कहा कि लोगों को असुविधा हो, कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए, तो कुछ लोग ऐसा होते हैं कि कोई जागरण के आयोजन के लिए उसके लिए भी कई बार रास्ता रोक लेते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए हमारे कहते हैं अगर हिंदू या किसी और धर्म का अगर कोई पंथ का अगर कोई जागरण करवाता है, भंडारा करवाता है, तो नॉर्मली उन्हें प्रशासन से परमिशन लेनी होती है। लेकिन मुस्लिम समाज की जो ये जुम्मे की नमाज होती है ये विदाउट किसी परमिशन के होती है।
हरियाणा शिवसेना के प्रवक्ता ऋतुराज ये भी कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री के बयान के बाद भी प्रशासन सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने से लोगों को नहीं रोकता है तो हिंदू संघर्ष समिति के सदस्य खुद उन्हें रोकेंगे। वहीं मुस्लिम समुदाय का पक्ष रख रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं को शिकायत है कि मुख्यमंत्री को सड़क पर नमाज पढ़ने वाले तो दिखते हैं मगर हमला करने वाले नजर नहीं आते। आदर्श राठौर, बीबीसी दिल्ली।
राजनीति में हवा कब क्या रुख लेगी कहना मुश्किल है, कर्नाटक में भी यही दिख रहा है। राज्य में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि उन्हें जनार्दन रेड्डी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि येदियुरप्पा ने उनके रिश्तेदारों को टिकट देने का भी समर्थन किया है। दोनों के बीच अरसे तक तनातनी रही है। इस बदले रुख के क्या मायने हैं बता रहे हैं बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बी एस येदियुरप्पा ने आज जमकर पार्टी के उस निर्णय की वकालत की जिससे गैर कानूनी खनन घोटाले के आरोपी गाली जनार्दन रेड्डी के भाइयों और साथियों को पार्टी ने चुनाव में टिकट दी है। हमारी मुलाकात जनार्दन रेड्डी के साथ तब हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया था कि वो बल्लारे में उनके भाइयों के लिए प्रचार नहीं कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने मुझे रावना बुलवाया था जब हम मुख्यमंत्री थे, लेकिन हम उन बातों को भूल गए हैं। उन्होंने चुनाव जीते हैं और इस समय भी बल्लारी में स्वीप होगा। ये थे बी एस येदियुरप्पा के शब्द। येदियुरप्पा ने प्रेस क्लब ऑफ बैंगलोर के पत्रकारों से मुलाकात कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी ने उन सारे सदस्यों को टिकट दी है जिन्होंने पार्टी की टिकट मांगी थी।
उन्होंने ಒಂದು ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಸೇರಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿಯ।
ये बात सही है कि जनार्दन रेड्डी ने पार्टी की टिकट नहीं मांगी है, लेकिन इसमें सवाल क्या है? उनके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे थे उनमें तो उनको रिहा मिल गई है। ये थे बी एस येदियुरप्पा के शब्द। दिलचस्प बात यह है कि जिन्होंने जनार्दन रेड्डी के खिलाफ मुकदमे दायर किया है वो येदियुरप्पा के बयान को अस्वीकार करते हैं। समाज परिवर्तन समुदाय के SR हीरेमठ ने कहा है कि जनार्दन रेड्डी के खिलाफ अभी भी मुकदमे चल रहे हैं। बहरहाल राजनीति में और खासकर चुनावी माहौल में कोई भी कुछ भी वकालत कर सकते हैं। जनता जनार्दन अभी बल्लारी के जनार्दन रेड्डी के बारे में क्या कहती है वो मई के 15 तारीख को पता चलेगा। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
उधर पश्चिम बंगाल में 14 मई को पंचायत चुनाव होने हैं। बीजेपी ने इन चुनावों में अपनी रणनीति बदली है और 850 से ज्यादा मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बीजेपी की बदली हुई रणनीति की वजह क्या है, मैंने कोलकाता में मौजूद स्थानीय पत्रकार प्रभाकर M से बात की और यही सवाल पूछा।
बीजेपी ने अपनी रणनीति तो बदली है इस बार इस लिहाज से कि रिकॉर्ड तादाद में उन्होंने अल्पसंख्यकों को मैदान में उतारा है और बंगाल के सियासी समीकरण ही ऐसे हैं कि उसके बिना मुस्लिमों को उतारे यहाँ कोई पार्टी कामयाब हो नहीं सकती है और बीजेपी को भी अब लग रहा है कि ममता के मुकाबले के लिए उनके हथियार से ही उनको मात देना जरूरी है क्योंकि ममता भी यहाँ मुसलमानों के सपोर्ट से ही वाम मोर्चा को हटाकर और सत्ता पर काबिज हुई थी 2011 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन बीजेपी की इस रणनीति के संकेत तो बहुत पहले से मिलने लगे थे। अभी जनवरी में उसने एक अल्पसंख्यक सम्मेलन आयोजित किया था तभी ये संकेत मिल गया था कि बीजेपी इस बार मुसलमानों को तरजीह देने लगी है।
लेकिन जो एक छवि है ममता बनर्जी की एक अलग है, भारतीय जनता पार्टी की अलग है, तो ऐसे में ये केवल टिकट देने से क्या बात बन पाएगी?
कम से कम बीजेपी को तो यही लगता है और जाहिर है इसलिए उसने जितने राज्य के सीमावर्ती इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, मालदा, बीरभूम, उन्हीं जगहों पे वहाँ अल्पसंख्यक वोट ही निर्णायक है, तो वहाँ तमाम सीटों पर उसने अल्पसंख्यकों को ही टिकट दिया है। उसको लगता है कि शायद कुछ तो वोट मिलेंगे वहाँ, कुछ तो समर्थन मिलेगा अल्पसंख्यकों का उनको।
तृणमूल कांग्रेस, वाम मोर्चा, इनका क्या कहना है?
यहाँ संख्या के हिसाब से तो तृणमूल कांग्रेस के बाद बीजेपी ही नंबर दो पे है। सबसे ज्यादा सीटों पे बीजेपी ने उतारा है, उसके मुकाबले सीपीएम और कांग्रेस काफी पीछे हैं यहाँ। लेकिन तृणमूल का कहना है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को टिकट देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है बीजेपी को, क्योंकि अल्पसंख्यक जानते हैं कि उनका हितैषी कौन है और उनके हितैषी कैसे हैं और क्या कर रहे हैं उनके लिए। तो जैसे तृणमूल कांग्रेस के महासचिव हैं पार्थ चटर्जी, उन्होंने दावा किया कि टिकट देने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, दीदी यानी ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यकों का पूरा भरोसा है और राज्य सरकार उनके लिए काफी काम कर रही है।
ये थे कोलकाता से पत्रकार प्रभाकर एम। और अब वक्त है खेल की दुनिया की खबरों का। मौजूद हैं आदेश कुमार गुप्त। क्या है आदेश जी आज?
जी देखिए वात्सल्य, आईपीएल का बोलबाला है फिलहाल आज तो। हालांकि आज अगर आईपीएल के मुकाबलों से पहले अपने श्रोता को बता दें कि न्यूजीलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल आज शीर्ष वरीयता हासिल चीन के लिन डैन ने अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल मुकाबले में दूसरी वरीयता हासिल इंडोनेशिया के यूनाइटन क्रिस्टी को 21-14, 21-19 से मात दी। हालांकि कल सेमीफाइनल मुकाबले में बी साई परिणीत की हार के साथ ही भारत की चुनौती समाप्त हुई थी। अब अगर आईपीएल की बात करें तो थोड़ी देर में दूसरा मुकाबला इंदौर में किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा, जहां किंग्स इलेवन पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। जबकि थोड़ी देर पहले मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 13 रन से मात दी और राहत की सांस ली, क्योंकि अब उसके लिए एक एक जीत बहुत ही महत्वपूर्ण है।
8 अंक हो गए हैं मुंबई के खाते में
और कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने जीत के लिए 182 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वो निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 168 रन बना सके। हालांकि रोबिन उथप्पा ने 54 रन बनाए, नीतीश राणा ने 31 रन बनाए और कप्तान दिनेश कार्तिक ने 36 रन बनाए। लेकिन वासन जी समझ में नहीं आया कि जो सलामी बल्लेबाज के तौर पर आजमाए जा रहे थे सुनील नारायण, आज उन्हें काफ़ी बाद में भेजा गया। हालांकि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन ऐसा लगता है कि शो मावी ने जिस तरह से अच्छी बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में तो
उन्हें मौका दिया गया, मौका दिया गया। और टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास मौके हैं जिससे वो टेस्ट कर सकें।
जी, और मुंबई इंडियंस ने इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 181 रन बनाए थे। सूर्य कुमार यादव की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से बड़े सितारों के बीच में छुपे रुस्तम की तरह उभरे हैं, उन्होंने आज भी निराश नहीं किया कप्तान को। 59 रन बनाए, इवान लेविस ने 43 रन बनाए और हार्दिक पांडे ने नाबाद 35 रन बनाए। तो इस तरह से धीरे धीरे मुंबई इंडियन की गाड़ी जो उतरी हुई थी वो पटरी पर आती
हुई दिख रही है।
जी
बहुत शुक्रिया आदेश जी। श्रोताओं से विदा लें उसके पहले मुख्य समाचार मानसी से।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान स्थित न्यूज एजेंसी अफगान इस्लामिक प्रेस ने कहा है कि उत्तरी अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने भारतीय कंपनी केईसी इंटरनेशनल के 7 कर्मचारियों को अगवा कर लिया है। अफगानिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि खोस्त प्रांत की एक मस्जिद में हुए बम धमाके में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। बीते 9 सालों में पहली बार लेबनन में नागरिक आम चुनावों में मतदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री साद हरीरी ने लोगों से अपील की है कि वो अपने देश को मजबूत बनाने में मदद करें। पोलैंड में आए भूकंप के बाद वहां की एक कोयला खदान में फंसे 4 मजदूरों को निकालने के लिए बचाव दल की कोशिशें बीती रात से लगातार जारी हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। फेसबुक प्रसारण में मदद की मीना कोटवाल ने।
आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक अफगानिस्तान में अगवा हुए भारतीयों समेत बाकी दूसरी खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।